नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। तमिलनाडु में एक ही चरण के और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो गया है। दोनों राज्यों में कल वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन गृहमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने कुल्टी और सिलीगुड़ी में रैलियों को संबोधित किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हल्दिया में एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दलों ने भी राज्य भर में प्रचार किया। इस बीच तमिलनाडु में मतदान की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंतर्गत 23 अप्रैल को कुल 152 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1478 है। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। मतदान 44376 बूथों पर होगा, जिनमें लगभग 3000 सहायक बूथ भी शामिल हैं। 5444 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी, जबकि 207 मॉडल बूथ होंगे। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान की सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कोलकाता से कल्याण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वे उत्तर 24 परगना के दमदम और हाबरा तथा हुगली के सप्तग्राम में जनसभाओं को संबोधित करेंगे तथा सोनारपुर में रोड शो करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के अनुरोध पर अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष विराम बढ़ा रहा है। 2 सप्ताह का संघर्ष विराम आज समाप्त होने वाला था। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान अमेरिकी सेना ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक बातचीत समाप्त नहीं हो जाती। राष्ट्रपति ने ये कदम ऐसे समय उठाया है जब ईरान आगे की बातचीत के लिए आनाकानी कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान से भारत की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर पड़ता है। जर्मनी की 3 दिन की यात्रा के पहले दिन रक्षा और सुरक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए सुरक्षा खतरों का सामना कर रही है और तकनीकी परिवर्तन ने स्थिति को बेहद जटिल और परस्पर संबंधित बना दिया है। रक्षा मंत्री ने भारत और जर्मनी के रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इस बीच सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी आपूर्ति सामान्य है और किसी भी एलपीजी वितरक के यहां आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बावजूद सरकार ने घरेलू एलपीजी आपूर्ति को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले की बरसी पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर आतंकवाद के अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि जब मानवता की सीमाएं पार की जाती है तो जवाब निर्णायक होता है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कल ब्रिटेन के रक्षा उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। सीडीएस ने कहा है कि बेहतर आर्थिक एकीकरण से रक्षा विनिर्माण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती में सहयोग संभव होगा। उन्होंने बताया कि रक्षा औद्योगिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के सह डिजाइन, सह विकास और सह उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सुनैना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंच गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रों और पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इस बीच बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है और पूरे क्षेत्र में भक्ति और उत्साह का माहौल है। आईपीएल क्रिकेट में ईशान मलिंगा के 4 विकेट की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही